진짜 그게
ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको स्पष्ट सुनाई दे रहा है? यहाँ माता जी तरफ सुनाई दे रहा है? प्रतिध्वनि नहीं आ रही है? हम प्रभास क्षेत्र में बैठे हैं। जैसा कि हम दोपहर में चर्चा कर रहे थे, ये बहुत पावन भूमि है, इतिहास बहुत पुराना है इस क्षेत्र का। स्वयं चंद्रदेव, बहुत आवाज हो रहा है, चंद्रदेव अपनी पत्नी रोहिणी देवी के साथ यहाँ पर आए थे। शिव जी की कृपा यहाँ पर प्राप्त हुई। चंद्रदेव का तेज पुनः चंद्रदेव को प्राप्त हुआ, इसलिए इस स्थान का नाम हुआ प्रभास, प्रभास क्षेत्र। प्रभास क्षेत्र का महत्व के लिए दूसरा भी एक कारण है कि यहाँ श्री कृष्ण का तिरुभाव हुआ और यदुवंशों का भी, वंशियों का भी तिरुभाव हुआ। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्पतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन, कि हे अर्जुन, मेरे कर्म, मेरा जन्म आदि इस भौतिक सृष्टि में सदैव दिव्य होते हैं, और जो व्यक्ति इन कार्यों की दिव्यता को भली भांति जान लेता है तत्वतः उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, बल्कि वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान सदैव दिव्य स्तर पर स्थित रहते हैं, भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अधीन कभी नहीं रहते हैं, बल्कि प्रकृति के तीन गुण सदैव उनके अधीन रहती हैं। इसलिए श्री कृष्ण के जो कार्यकलाप हैं, जो कि वो प्रकट कराते हैं जबकि वो यहाँ अवतीर्ण होते हैं, ये सब के सारे दिव्य हैं। तो जैसे भगवान का जन्म दिव्य है, उसी तरह से उनका मरण भी दिव्य है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के लिए जन्म शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है सिद्धांतिक दृष्टि से, क्योंकि भगवान तो सदैव प्रकट रहते हैं, सदैव रहते हैं, केवल प्रकट और अप्रकट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से मरण ये शब्द भी भगवान के लिए नहीं प्रयोग किया जाता। भगवान का आविर्भाव होता है और भगवान का तिरोभाव होता है, भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान का अप्राकट्य होता है। तो भगवान अपने लीलाओं को सदैव स्थित रखते हैं उनके धाम में, परव्योम आध्यात्मिक जगत में, और बीच बीच में वो ब्रह्मांड में उसी धाम को प्रकट कराते हैं और उनमें लीलाएं प्रदर्शित करते हैं ताकि हम सब उन लीलाओं को देख सकें। इसलिए इनको प्रकट लीलाएं कहते हैं। वैसे शास्त्र में उदाहरण सुंदर दिया गया है, श्री राजीव गोस्वामी पाद बताते हैं, श्रीधर स्वामी पाद, सारे वैष्णव आचार्य इस सुंदर उपमा को बताते हैं कि जैसे सूर्य का न तो वास्तव में उदय होता है न सूर्यास्त कभी होता है, ये केवल हमारे दृष्टिकोण का प्रश्न है। हमारे स्थान में जहाँ हम रहते हैं पृथ्वी लोक के ऊपर, कभी हमें लगता है कि सूर्योदय हो रहा है और शाम के समय फिर हमें लगता है कि सूर्यास्त हो रहा है, परंतु सूर्य तो अपने जगह में स्थित है, न तो वो उदित होता है न वो अस्त होता है, हमें ऐसे दिखाई पड़ता है। और पृथ्वी के अलग अलग स्थानों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अलग अलग होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की तुलना सूर्य से की गई है कि जिस प्रकार सूर्योदय होता है सूर्यास्त होता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान का प्राकट्य और अप्राकट्य होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में रहते हैं सदैव और समय समय पर हरेक ब्रह्मांड में प्रकट हो जाते हैं। थोड़े समय के लिए उनकी लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, फिर उनकी लीलाओं को अप्रकट करके दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट कराते हैं, और इस तरह से एक के बाद एक ब्रह्मांड में भगवान के दिव्य लीलाएं चलती रहती हैं। इसलिए भौतिक सृष्टि के भीतर भी भगवान की लीलाओं को नित्य लीला कहा जाता है। एक एक लीला जब यहाँ होती है तो वहां समाप्त होती है, तो दूसरे ब्रह्मांड में वही लीला होने लगती है, वहां समाप्त हो जाती है तो तीसरे ब्रह्मांड में शुरू हो जाती है, तब तक दूसरी लीला पहले ब्रह्मांड में शुरू होकर समाप्त होती है, फिर वो दूसरे ब्रह्मांड में जाती है, ऐसे चक्र से सारे भगवान की लीलाएं एक के बाद एक क्रम से प्रत्येक ब्रह्मांड में चलती रहती हैं। तो भगवान के धाम में, आध्यात्मिक जगत में ये लीलाएं तो नित्य हैं ही, परंतु इस भौतिक सृष्टि में भी भगवान की लीलाएं नित्य इस दृष्टि से है कि इस भौतिक सृष्टि के भीतर कहीं ना कहीं तो भगवान की लीलाएं हर समय होती रहती हैं। तो भगवान के तिरोभाव के संबंध में भी ऐसे एक सत्य है जो हमें समझ लेना चाहिए। भगवान का तिरोभाव जो हुआ, इस तरह से हुआ कि जो सही तरह से परंपरागत समझते नहीं है इसको, वो अवश्य कोई ना कोई गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। वो सोचेंगे कि कृष्ण की मृत्यु हो गई, किसी जरा नाम के शिकारी ने तीर छोड़ दी और इसलिए वो तीर जब श्री कृष्ण के शरीर को लगी तो फिर उनका देहांत तो हो गया। ऐसे विचार लोग करेंगे, लोगों के मन में ऐसे विचार होंगे। यहीं करें प्रवचन या ऊपर चले जाएं, यहाँ बहुत आना जाना हो रहा है। अमर गोविंद प्रभु बता रहे थे कि ऊपर करना अच्छा है, ऊपर टेरेस है, बाहर हाँ ऊपर जाएं। ठीक है, आपको यदि कोई विरोध ना हो, आपत्ति ना हो, तो आपको थोड़ा कष्ट देंगे, हम सब ऊपर चलेंगे। ऊपर मतलब दूसरे मंजिल पर।